Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena.
धन्यवाद. नमस्कार. घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और हम आप सभी श्रोताओं का आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र में आपका स्वागत करते हैं. आज के संयुक्त अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और साथ ही चर्चा भी करेंगे. आज चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक उदयन रे. उदयन जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
वेलकम. थैंक यू सो मच.
और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख.
डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस रिवर्स 6-डे लूजिंग ट्रेंड. सेंसेक्स राइजेस ओवर 500 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स अबव 25,000 पॉइंट्स. Asian indices register decline. Hong Kong's Hang Seng falls over 10%. And crude oil prices decline. Brent crude is trading at $79.24.
घरेलू बाजार में 6 दिनों से चल रही बिकवाली का सिलसिला थमा. सेंसेक्स में 500 अंक से अधिक की वृद्धि और निफ्टी 25,000 के पार. प्रमुख एशियाई सूचकांकों में आज बिकवाली देखने को मिली. हांगकांग का हैंग सेंग 10% टूटा. और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट. ब्रेंट क्रूड $79.24 प्रति बैरल के स्तर पर. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बाजार के ऊपर. घरेलू बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में 6 दिनों से चल रही बिकवाली का सिलसिला थमा और आज बढ़त के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 500 अंक से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई और निफ्टी 25,000 के स्तर के ऊपर बंद हुआ. कारोबार के अंत में सेंसेक्स 585 अंक यानी 0.7% के लाभ में के साथ 81,635 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी भी 217 अंक यानी 0.8% की मजबूती के साथ 25,013 पर रहा. एनएसई की 40 कंपनियों ने अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ और 81 निचले स्तर पर रही. बात करें बीएसई के मिड कैप्स और स्मॉल कैप की तो दोनों ही सूचकांकों में आज बढ़त देखने को मिली. मिड कैप 1.8% बढ़ा और स्मॉल कैप में लगभग 2.5% की तेजी दिखाई दी.
डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस रिबाउंडेड टुडे स्नैपिंग इट्स 6-डे लूजिंग स्ट्रीक. द बीएसई सेंसेक्स एडवांस्ड ओवर 500 पॉइंट्स व्हाइल द निफ्टी 50 सेटल्ड अबव 25,000. At close, the Sensex increased by 585 points or 0.7% to close at 81,635, while the Nifty gained 217 points or 0.8% to settle at 25,013. In the NSE, 40 companies hit their 52-week high, 81 hit their 52-week low. The broader market at BSE ended in positive territory. The mid-cap index was 1.8% up and the small-cap index added nearly 2.5%. In the Sensex index, 19 out of 30 companies ended higher. The top gainers today were Adani Ports, surged over 4.5%, Mahindra & Mahindra increased nearly 3.5%, and Reliance added 2%. Conversely, the top laggards today were Tata Steel declined 2.8%, Titan lost 2.5%, and Bajaj Financial Services fell more than 2%. Except metal, all other sectoral indices at the BSE logged gains. The top gainers today were services rose more than 3%, capital goods as well as industrials gained over 2.8% each, and power added nearly 2.5%. Meanwhile, the only laggard today was metal, which lost over 1%. The overall market breadth at the BSE was positive, as out of 4,045 companies, shares of 3,024 advanced, 923 declined, and 98 remained unchanged.
विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले मामूली बढ़त के साथ 83.96 रूपये के स्तर पर दर्ज किया गया. डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान 102.42 के स्तर पर था.
Again, shares rebounded today as investors seized the opportunity perhaps to buy the dips. How much was the BJP's better than expected performance in the state assembly election boosted the market sentiment?
Rajesh, I think it was one of the factors, because some of the exit polls, almost all of them were predicting an adverse outcome for the ruling party, and so it was a positive surprise. The other important development that happened was it was being forecasted by international market experts that the rebound in Chinese markets would continue for many weeks, and it will turn into the next calendar year. Now, the amount of legs got exposed today, because there was a clarification and there was an event that had to happen.
We'll discuss that in detail.
That actually also started happening. And as a result, in any case, a lot of the Indian experts and some other experts were saying that there's only so much of what is called the rotational play. You know, when you're rotating your the countries in which you're in whose equity markets you're investing, so the rotation, there's only till a certain point till which you can rotate your portfolio, and if there's a growth center in terms of geography, then you will only do it till a certain level. So that got exposed, so that helped, and you would see some of the big gainers are coming from the more prominent stocks. So these were some of the factors that came into play. And then, of course, there's this whole expectation no adverse sort of decisions coming in terms of interest rates as far as RBI's MPC meeting is concerned. So some of those things, basically there have been only positive surprises, to put it in a nutshell. Mm-hmm. And that actually sort of helped. And, you know, after a point of time, when you have a consistent basis in which the market is traveling in one direction, it does take a pause and move turn the other side, so it's not surprising, and so some of these things actually helped, and that's why you saw the bounce.
This exposed, you used the word that non-detailing of the stimulus got exposed today, but China's too smart for that. In the coming days, they will come up with all the details that the market requires.
Actually, what happens, Rajesh, you know, markets, I mean, there is one part is fundamentals, where you're looking at the numbers, hardcore numbers. The other is the sentiment, okay? So, which is the leap of faith. You know, when you're taking a higher risk investment, there's a leap of faith, okay? So, now the question was, the international markets or international players in Chinese markets for a long time wanted this stimulus to happen. Hmm. So, the weight was so much that when it came, if you go through the online commentaries, so they said that is it enough? Is it a little too less, a little too late? So that skepticism was there. So what was required was not to let the skepticism come back. So the word animal spirits, Rajesh, is there for a particular reason. Okay. There's no animal spirits are often has got no hardcore logic on the ground.
Okay.
It's just a faith that's making you feel very good about it, and you're going about it, and you cannot as an investor ignore it. So there are approaches of investment strategies accordingly. So that's what got played out today, and the key part, Rajesh, is whether people who are putting money in stocks. Why do we put money in stocks? We put in money. We are taking higher risk, so we get higher return in the future. If that visibility of higher returns becomes lesser, and we don't feel confident about it, that's when the demand for stocks, you know, will come. You know, there'll be more number of people selling than buying. So that's another way of. If you look at stock market in terms of supply and demand of stocks. I mean, that's a very simplistic view. That's not what it is. But if you just look at it that way, then this is one way of explaining it.
So Spursh has a question related to China stimulus.
So उससे पहले मैं लेकिन आपसे उदयन जी ये जानना चाहूँगा. आपने अभी हमें factors बताए हैं, लेकिन क्या इसको हम आज की बढ़त को reversal माने या फिर हम देखें इसको एक profit book करने का मौका?
देखिए गिरते हुए मार्केट में प्रॉफिट प्रॉफिट बुक अगर आप रोटेट करने के लिए कर रहे हैं, अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हैं, आप यहां से प्रॉफिट बुक करके दूसरी जगह लेके जाए दूसरे मार्केट में, वो तो ठीक है, वो मैं समझा जा सकता है। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स उसको प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो वो एक बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी नहीं हुई, क्योंकि वो इसी मार्केट में रहेंगे, वो ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड नहीं हुए। तो अगर इंटरनेशनली कर रहे हैं तो वो ये है कि आप एक मार्केट से दूसरी मार्केट में जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे इतना सबड्यूड था, इतना गिरा हुआ था, तो उस प्ले में आप टैक्टिकली शॉर्ट टर्म एक अपॉर्चुनिटी को लेके आप उसमें गेन करना चाहते हैं, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी जब सब जा रहे हैं वहां पे, तो वो वैनिश भी उतनी तेजी के साथ हो जाता है। जैसे मक्खन गरम तवे पे गिरते ही पिघलना शुरू हो जाता है, तो शॉर्ट टर्म जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो टैक्टिकल प्लेज होती हैं, जो रोटेशनल बेनिफिट्स होते हैं, वो कुछ हद तक ही आपके आप बेसिकली आपने आप अपने जो पोर्टफोलियो जो मिक्स है आपकी जो थाली है उसमें दाल ज्यादा आ गई थी, दाल को कम कर रहे हैं, और कुछ नहीं, और कुछ कोई और सब्जी आप एक्स्ट्रा ला रहे हैं, और तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे एक सर्टन लेवल तक ही आप करेंगे, उसके आगे नहीं कर पाएंगे। तो रिवर्सल उस हिसाब से, और ये जो कि मैंने राजेश को कहने का तात्पर्य यही था कि वो लिमिट दिखा गया, क्योंकि भारत एक इंटरनेशनल पोर्टफोलियो में कितना इम्पोर्टेंट है वो आज आपको दिख रहा है
जी।
अगर ना होता तो वो किसी और मार्केट जाते, तो ये आज शायद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने शायद आज भी बेचा हो, मेरे पास फिगर्स तो नहीं है, बट आप पाएंगे कि ये एक मेन स्टे रहेगा। ये दिक्कत, हम सारे जो बड़े नामी गामी इंडेक्सेस हैं वहां पे हम एंट्री कर रहे हैं, और उस वजह से ही कुछ बिल्कुल डेडिकेटेड फ्लोज आते रहेंगे। और जब आपका इकोनॉमी मतलब रफली अबाउट 7% ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर उसके एक मतलब एक उससे कहीं ज्यादा ग्रो करेगा, एंड उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, उसका जो फायदा है, मुझे नहीं दिखता कि क्यों कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर नहीं करेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म इश्यूज आएंगे, जैसे कल जैसे बॉन्ड यील्ड्स अमरीकी मार्केट में बॉन्ड्स में बढ़ गए, तो तब आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कहेंगे ठीक है हम बॉन्ड्स में लगाते हैं, तो ये मूवमेंट अप डाउन होगा, पर एट अ सेक्युलर लेवल ऑन एन एवरेज वो होता जाएगा। और ये भी याद करना रखना जरूरी है कि 2024 में हमारे मार्केट्स का रन बहुत जबरदस्त रहा है
जी।
ये हर साल नहीं होता, हर महीने नहीं होता कि हर बार आप नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इक्विटी मार्केट्स में ये नॉर्मल टेंडेंसी नहीं है, तो ये एबरेशन है ना कि द रूल है।
सो डेन, हाउ वरीसम इज दिस फ्रॉम द चाइनाज पॉइंट ऑफ व्यू दैट दे हैव बीन एक्सपोज्ड एज यू सेड, एंड हाउ विल इंडिया बी इम्पैक्टेड इन ऑल दिस पॉजिटिवली और नेगेटिवली इन देयर एफर्ट टू यू नो रिवाइव their economy financially and monetary through the monetary stimulus packages, how will India be impacted?
Rajesh, there is it's not either or. If they do well, we also do well. It's worth pointing out that we do trade of about 116 billion annually. I think last year we did that much of trade, 100 billion of imports and 16 odd billion exports. So if they do well, there are people who are exporting out there, and we are also using their imports to produce our products and our output. So and nothing is stopping our investors from investing in China. So it's not as if it's a either or situation. Yeah, but it always helps you to be the number have the number one billing or be one of the top billing in terms of investment destination. That helps, but we are increasingly getting interlinked with other major economies, and so therefore it's not a zero sum game. Something good happens out there, it will help. Something not so good happens out there, it will still affect you. So if the metal if they don't do economically well, our metals guys are not going to do that well.
Okay.
So it's going to always going to be a mixed bag, Rajesh. That's what I would suspect.
जी, उदयन जी, आपका ऑटो सेक्टर को लेकर के क्या विचार है? क्योंकि हमने पीछे समय में देखा कि बहुत लंबा रन अप रह चुका था उसमें, तो आगे आप क्या देख रहे हैं और निवेशकों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी?
यू नो दे हैव स्किडेड 9% ऑन स्लगिश डिमांड.
या यू नो ऑटो इज अ प्रीटी वाइड सॉर्ट ऑफ इन द एम्बिट दिस लॉट ऑफ दिस आर टू व्हीलर्स एंड देयर इज commercial vehicles and passenger cars. So I suspect that you will see differentials out there. So you might just see slightly better news in terms of two-wheelers because it seems that things have gone reasonably well as far as monsoons are concerned. So you might just see a little bit of a pickup out there. But there was an inventory issue some time back. So I think it's something that's playing out. But it's not something that one should be worried about.
Okay.
Most of the growth does get driven by new launches in our country. So those things will keep happening. So it's not something that I would personally be very worried about.
Yeah. So what about coming back to the market today? Mid cap was 1.8% up and small cap index added 2.5%. So what could be the reasons and what are your expectations in the coming week?
Rajesh, what happens is when the markets are on their way up, so the first category that starts doing really well is the large cap. When people get run out of large cap ideas, they go to mid cap and then they go to small cap. On the way down, when the markets are declining, the people who start getting bashed up the most are the small cap and the mid cap. Simply because the enough information about their endurance in rough conditions is not there. You know, that track record is not there. So therefore, you know, people would like to be on more secure ground. So so this is, in any market movement, these are things that are always at play. I'm sure there will be individual or sectoral plays, sectoral factors as far as mid caps and small caps are there. But 50-60% of the answer to your question can be answered with this one.
Okay. Yeah.
अब नजर डालते हैं अपनी अगली खबर की ओर. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक कल से शुरू हुई. 6 सदस्यीय समिति द्वारा पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति का विश्लेषण करते हुए ब्याज दरों को लेकर चर्चा जारी है. एमपीसी के फैसले की घोषणा 9 अक्टूबर को होगी. पिछली लगातार 9 बैठकों में रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है.
Then what are your expectations from the RBI policy decision scheduled for tomorrow? While the central bank is widely anticipated to maintain rates, some are expecting a shift in the stance to neutral. What is your expectation?
I would also agree with that. I think it's like, Rajesh, it's like the traffic light. So it's like an amber. So from red, you've gone to amber and you're just saying that I'm now ready to get into green. But the RBI, I would expect them to hold their ammo, hold their horses, simply because of the current situation as far as international crude prices are concerned, Rajesh.
Okay.
So that is one aspect which can put pressure on the price situation. And so this is something that they'll be very, very conscious about.
अटल पेंशन योजना के तहत अब तक 7 करोड़ से अधिक नामांकन हो गए हैं. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अब तक 56 लाख से अधिक नामांकन हुए हैं. अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए योगदान के आधार पर प्रतिमाह 1,000 से 5,000 रूपये की पेंशन प्रदान करने की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है. इसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था. उदयन जी, तकरीबन इस वर्ष 56 लाख से ज्यादा एनरोलमेंट हुई है, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप?
देखिए, ये तो बहुत उत्साहजनक डेवलपमेंट है और पर रास्ता काफी लंबा है. काफी दूर, जैसे कि हम जानते हैं 90% हमारे जो वर्क फोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर
जी.
और तो अगर आप 90% देखें तो ये बिल्कुल सरफेस को ही स्क्रैच कर रहे हैं. पर ये इम्पोर्टेंट है, यहां से जो सीख मिलेगी वो इसको स्पीड बढ़ाने में काम आएगी. और ये बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि तकरीबन आज से 25 साल बाद आज जो लोग काम कर रहे हैं
जी,
और 20% मतलब 20% भारत की आबादी 60 साल से ऊपर की
होगी।
तो अभी तक हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बात करते थे, हमारे यूथ के बारे में बात करते थे, पर आज से 25 साल बाद हमारे यहाँ पे तादाद जो है 60 साल से अधिक की वो भी बहुत बहुत बड़ी होगी।
Moving on, the Defence Minister Rajnath Singh held a telephonic conversation today with the German Federal Defence Minister Boris Pistorius. The leaders discussed ways to strengthen defence industrial collaboration and supply chain resilience. They also reviewed ongoing defence cooperation activities, including exercises in the air and maritime domains. And the Union Minister of New and Renewable Energy, Prahlad Joshi, has said that India aims to be among the top 10 shipbuilding nations by 2030 and the top 5 by 2047. Delivering the keynote address at the Hamburg Sustainability Conference in Germany, the minister highlighted India's progress in renewable energy and green shipping. He said that since 2014, India has witnessed a transformative increase in its renewable energy capacity with a 175% rise from 75 to over 208 gigawatts. Mr. Joshi also emphasized that the International Solar Alliance, supported by over 100 countries, demonstrates India's leadership in global efforts to combat climate change through solar energy. Good to see that a lot of emphasis is being given to renewable energy these days, and efforts are being made to, you know, to be sustainable in every aspect of our living.
Yes, absolutely, Rajesh. And we are at a point in these energy sources where leadership in these areas will help us to embed these sort of energy systems within our economy. So it's almost like how gasoline or petrol was being used in the 19th century for automobiles and what have you. We are at that kind of stage. So if we get this right, then we'll be there and we won't be having these kind of vulnerabilities which we discussed.
Yes.
Where we are importing most of our fuel from abroad. So that also makes us secure, and it also helps
and self-reliant.
Self-reliant, and it will also help us make things available for others as well, you know, at affordable sort of costs. Mm.
आइए नजर डालते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर। पांच प्रमुख एशियाई सूचकांकों में से चार आज नुकसान के साथ बंद हुए। हांगकांग के हैंगसेंग में 10% की भारी गिरावट देखने को मिली। जापान के निकेई में 1% और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स तथा दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.5% से अधिक के घाटे में रहा। वहीं चीन के शंघाई कॉम्पोजिट में 4.3% की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर देखें, यूरोपीय शेयर बाजारों में आज कमजोरी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 1% से अधिक के घाटे में था। फ्रांस के कैक में 0.5% से अधिक की गिरावट देखी गई। वहीं जर्मनी का डैक्स 0.1% नीचे रहा।
यूएस स्टॉक्स एंडेड लोअर यस्टरडे एज इन्वेस्टर्स लोअर्ड एक्सपेक्टेशंस for Federal Reserve interest rate easing following the release of stronger U.S. jobs report last week. The Nasdaq Composite fell more than 1% and S&P 500 as well as Dow Jones Industrial Average were nearly 1% down. So then, what is your expectation? What will the Fed be doing now?
Rajesh, during the course of this week, the remaining days, lots of data are going to be coming out. So that will sort of give people a sense of how Fed is going to shape up. There was this whole expectation that there's going to be another 50 basis point cut. But the kind of employment data that came out recently, that has kind of made people a little more circumspect. So those bets are now much lower. The good part or the interesting part is that the U.S. economy is turning out to be more resilient and more stable than people had feared. And so as a result, there's only so much that a Federal Reserve or central bank will need to do. You know, sometimes, you know, without doing so much, you can get the same results.
So how much will the geopolitical situation play in the decisions that one, US will take, or two, India will take, you know, and three, the oil factor?
Well, oil is the X factor in statistics and other quantitative techniques. You use the word exogenous variable. So things, it's a factor which is not is normally at play. So it's like a joker in the pack of a in a pack of cards. Now, so we just don't know how that will play. If once it comes into play, like it has done from 1st October onwards, see the kind of impact this has on a currency, on the stock markets. So if it comes into play, then central banks will have to, and governments will also have to adapt.
उदयन जी, हांगकांग में हमने देखा 10% की भारी गिरावट, क्या प्रमुख कारण रहा है इसके पीछे?
देखिए, वहां पे जैसे कि हमने शुरुआत में चर्चा कर रहे थे कि वहां पे विदेशी जो निवेशक है, जो बिल्कुल तूफानी अंदाज में वापसी की उन्होंने, उनको उम्मीद थी कि बहुत कुछ और भी आने वाला है, डिटेल बताने वाले हैं कि कैसे होगा, क्योंकि जो स्टिमुलस दिया गया है वो तकरीबन एक आप समझ लीजिए कि 6% ऑफ चाइना की जीडीपी, $1 trillion के आसपास, तो वो तो जबरदस्त अमाउंट ऑफ इंजेक्शन है. ऐसा है कि आपको स्टेरॉइड दिए गए, तो स्टेरॉइड लेके अब जो निवेशक हैं वो जानना चाहते हैं कि स्टेरॉइड लेके दौड़ेगा किस तरफ एथलीट, वो फिनिश लाइन की तरफ दौड़ रहा है कहीं और जा रहा है
जी.
तो वो उसमें जब क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तो जैसे कि हम जानते हैं चीन जो है वो इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ है, तो उनके मकाने बनी हैं, बिल्डिंगें बनी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है, और प्रॉपर्टी के ऊपर वेल्थ क्रिएट ज्यादा हुआ है चीन में. और तो निवेशकों का ये जानना था कि वो कंजम्पशन की तरफ जाएगा कि नहीं, उसके बारे में खबर नहीं मिली.
Moving on, oil prices fell today as concerns over potential oil supply disruptions eased. In the global crude market, Brent crude was trading 2% down at $79.24 per barrel, with the US West Texas Intermediate was trading 2.2% down at $75.43 per barrel when reports last came in. This is very briefly a good news, and that there will not be major disruptions in supply.
Yeah, as I mentioned, Rajesh, this is the other part. You know, people have suddenly realized that China is not going to be demanding as much oil as they suddenly thought because of the stimulus. So see how just one event is actually impacting all kinds of markets.
सराफा बाजार में सोना आज अंतिम समाचार मिलने तक 24 कैरेट सोना 0.08% गिरकर 76,070 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी 1.5% गिरकर 91,070 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई. तो श्रोताओं, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, और उदयन जी, मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
धन्यवाद.
थैंक यू उदयन फॉर बीइंग विद अस. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, domestic benchmark indices reverse 6-day losing trend. Sensex rises over 500 points. Nifty settles above 25,000 points. Asian indices register decline. Hong Kong's Hang Seng falls over 10%. And crude oil prices decline. Brent crude is trading at $79.24. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.